स्पेन एवं नीदरलैंड के मध्य होने वाले संघर्ष का डच पूंजीवाद के उदय में योगदान। 1579 के समझौते के अनुसार यद्यपि दक्षिणी नीदरलैंड ने स्पेन से एकीकरण स्वीकार कर लिया, किंतु इसका एक परिणाम यह हुआ कि एंटवर्प एवं फ्लेमिंग जैसे नगरों के कारीगर एवं उद्यमी या तो स्वतंत्र नीदरलैंड में प्रवासी होकर चले गए या वे यूरोप के अन्य नगरों में चले गए। इसलिए स्पेनी नीदरलैंड में पूंजीवाद का अपकर्ष एक स्वतंत्र नीदरलैंड और यूरोप के उन देशों में जहां नीदरलैंडी प्रवासी उद्यमी बस गए थे डच पूंजीवाद का उत्कर्ष हुआ। कारीगरों एवं उद्यमियों के प्रवास के पीछे इन वर्गों की एक राज्य की उनके प्रतिनिधियां थीं। वास्तव में मध्य युग से ही पूंजीवाद मुख्यतः स्वावलंबी नगर राज्यों द्वारा विकसित किया गया था, जैसे उत्तर में फ्लेमिश एवं हैंसियाटिक नगर, भूमध्य सागरीय भाग में इटली के नगर एवं दोनों के बीच राइन नदी पर स्थित दक्षिणी जर्मनी के नगर। यद्यपि इन पर शासन करने वाले व्यापारी कैथोलिक थे, पोप उनको संरक्षण देता था, किंतु इस तत्व ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उनके व्यापारिक उद्यम में बाधा उपस्थित नहीं की थी। जहाँ तक राज्य के साथ उनके संबंध का प्रश्न था, राज्य एक प्रकार से उनका माध्यम था। वे नहीं चाहते थे कि राज्य उनका मालिक बन जाए और न ही वे यह चाहते थे कि चर्च अथवा राज्य प्रत्यक्ष या परोक्ष करों के माध्यम से व्यापार और उद्यम पर इतना भार डाल दे कि वह वहन न किया जा सके। ये नगर राज्य अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र थे और उनकी स्थिति विदेशों से निरंतर व्यापारियों के आगमन एवं आवास पर आश्रित थी। करों द्वारा निर्वाह व्यय बढ़ जाने का अनिवार्य परिणाम यही होता है कि व्यापार केंद्र को किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर ले जाया जाए। इसलिए जब 15वीं सदी में चर्च ने कौंसिलियर आंदोलन का विरोध करने के लिए नए कर लगाए, तब पुराने स्वतंत्र नगरों की ओर से इसका विरोध किया गया। 15वीं सदी में एक अन्य प्रक्रिया का आरंभ हो रहा था, नवोदित राजतंत्र द्वारा स्वतंत्र नगरों पर अधिकार की स्थापना। अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए यह राजतंत्र ग्रामीण कुलीन वर्ग एवं चर्च की सहायता पाने का इच्छुक था। नई नौकरशाही संगठित की जा रही थी, जिसके वेतन का माध्यम था सार्वजनिक कर अथवा व्यापार पर लगाए गए कर। इस प्रक्रिया से कुछ प्राचीन व्यापारिक परिवारों को लाभ हुआ, क्योंकि वे दरबारी वित्तदाता अथवा इंजारेदार बन गए, किंतु व्यक्तिगत रूप से व्यापारियों को लाभ नहीं हुआ। और चूंकि उनका अब राज्य पर नियंत्रण नहीं था, अतः वे इस कर का भी विरोध नहीं कर सकते थे। कुछ व्यापारिक परिवारों ने इस समस्या का समाधान अपने पुत्रों को नए राज दरबार अथवा चर्च का अधिकारी बनाकर किया। कुछ ने अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र एवं कम कर वाली भूमि की तलाश में दूसरी व्यापारिक सुविधाओं की ओर देखने का प्रयास किया। 16वीं सदी तक कई नई कठिनाइयां आ खड़ी हुईं। 1520 में लूथर का विद्रोह प्रारंभ हो गया। अब संघर्ष एक नौकरशाही राजतंत्री राज्यों एवं दूसरी ओर लूथर की क्रांतिकारी नीतियों के बीच था। इस संघर्ष के दौरान कैथोलिक देशों में कई परिवर्तन आ गए। पोपतंत्र ने सुधार आंदोलन पर विजय पाने के लिए राजतंत्रीय राज्यों के साथ अंतरंग संबंध कायम कर लिए। धर्म सुधार विरोधी आंदोलन का एक सामाजिक परिणाम था समाज में नौकरशाही तत्वों को बहुत बढ़ावा मिलना। इसमें अब धार्मिक तत्वों का भी समावेश हो गया। यह नौकरशाही उन तत्वों के प्रति बहुत हेय दृष्टिकोण रखती थी जो उसके अधीन रहने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे राज्य का सबसे बड़ा प्रतीक यूरोप में स्पेन का राज्य था। यह ऐतिहासिक दृष्टि से दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि कास्टोल के सामंती राज्य ने, जो कि संयोगवश अमेरिकी चांदी की आमद से विश्व स्तर की शक्ति बन गया था, चर्च और राज्य दोनों पर अपना यह स्वरूप हावी कर दिया। इस कारण प्रत्येक व्यापारिक समुदाय का रुख, चाहे वह कैथोलिक हो अथवा काल्विनवादी, स्पेन के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया और स्पेनी नीदरलैंड से उद्यमियों का अन्य देशों को प्रवास इसी का परिणाम था। 17वीं सदी के नए पूंजीवादी नगरों के उद्यमी वर्ग के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि यह पूरा वर्ग ही प्रवासियों द्वारा बना हुआ था और यह प्रवासी एक बड़ी संख्या में फ्लेमिश थे, अर्थात वे नीदरलैंड के दक्षिणी भाग जो स्पेन के अधीन था के प्रवासी थे। इन्होंने न केवल हॉलैंड की नई समृद्धि में योग दिया अपितु हॉलैंड से यूरोप के अन्य भागों के काल्विनवादी उद्यमियों का भी मुख्य भाग बनाया। हैम्बर्ग के व्यापारिक जीवन पर डच का ही आधिपत्य था, जिनमें से अधिकांश मूल रूप से फ्लेमिश थे। नीदरलैंड के बड़े समृद्ध प्रवासी जो फ्रैंकफर्ट पहुँचे वे भी फ्लेमिश ही थे। इन्हीं के कारण 1585 से 1630 के काल को एक बेल्जियन उपनिवेश के रूप में फ्रैंकफर्ट का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। राइन नदी के संपूर्ण मार्ग पर एंटवर्प और लीज के उद्यमियों ने पहले वस्त्र फिर खान उद्यमों को स्थापित करके वहाँ के कैथोलिक वासियों को नई समृद्धि प्रदान की। यहाँ तक कि स्कॉटलैंड में जहाँ काल्विनवादी पादरी वर्ग ने आर्थिक उद्यमों का विरोध किया था, 1588 में फ्लेमिश प्रवासियों ने ही वहाँ आधुनिक पूंजीवाद का आधुनिक आधार वस्त्र उद्योग स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया था। 30 वर्षीय युद्ध की अवधि में सभी राजाओं के बैंकर और वित्तदाता नीदरलैंड के या वहाँ के काल्विनवादी उद्यमी ही थे, जैसे द दिलेम बंधु आदि, जिन्होंने आगे चलकर डेनमार्क के मार्सेल परिवार के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ को वित्त प्रदान किया। लुई द गिर, जिसने स्वीडन के राजा को आर्थिक सहायता थी, वह लीज का एक काल्विनवादी था जिसके हाथ में स्वीडन का समस्त ताबा और लोहा उद्योग था। उसने न केवल स्वीडन अपितु यूरोप के अन्य कई देशों को सेनाएं व हथियार दिए और नौसेना की वृद्धि में योगदान दिया। फ्रांस में कार्डिनल रिचलियू के बैंकर्स दाता हाउस द विले एंटवर्प का काल्विनवादी था। इस प्रकार 17वीं सदी में ये उद्यमी यूरोप का आर्थिक विशिष्ट वर्ग कहे जा सकते हैं। केवल वे ही व्यापारियों उद्योग दोनों को गतिशीलता देने की क्षमता रखते थे और साथ ही सैनिक क्षेत्र में वित्त प्रदान करने एवं अन्य आर्थिक उद्यमों में पूंजी निवेश कर सकने में सक्षम थे।